ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सातवां स्कंद, सातवां अध्याय, अध्याय का नाम है प्रहलाद ने कर्म में क्या सीखा। श्लोक संख्या 43। कामान कामयते काम्यै यदर्थम इह पुरुषः सा वै देहस्तु पारक्यो भंगुरो यात्युपेति च। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की कामान इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को कामयते इच्छा करता है, कामये विभिन्न वांछनीय कार्यों द्वारा या जिस अर्थम के लिए यह इस भौतिक जगत में पुरुषः जीवात्मा सह वह वही निसंदेह देह शरीर तू लेकिन पारक्ष अन्यों का कुत्ता चीलों इत्यादि का भंगुरः नश्वर याति चला जाता है, उपैति आत्मा का आलिंगन करता है च तथा जीवात्मा अपने शरीर के लिए सुख सुविधा चाहता है और इस प्रयोजन से वह अनेक योजनाएं बनाता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि शरीर तो दूसरों की संपत्ति होता है। निसंदेह नश्वर शरीर जीवात्मा को गले लगाता है और फिर उसे छोड़कर चल देता है। तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर के लिए सुविधा चाहता है और इसके लिए वह उपयुक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है, किंतु वह यह भूल जाता है कि वह शरीर कुत्तों सियारों अथवा कीटों के भक्षण के लिए है और यह व्यर्थ मल राख अथवा मिट्टी में परिणत हो जाता है। जीवात्मा प्रत्येक जन्म में एक शरीर के बाद दूसरे शरीर की सुविधा के लिए भौतिक संपदा प्राप्त करने के लिए व्यर्थ प्रयासों में अपना समय गंवाता है। हरे कृष्ण। तो आप सबका आज की भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। ये प्रसंग चल रहा है कि जब प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने उनसे पूछा कि आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्रहलाद महाराज बताया कि उनको ये ज्ञान नारद मुनि जी से प्राप्त हुआ जब वो अपनी माँ कयाधु के गर्भ में थे। तो पिछले कुछ श्लोकों से प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को जो कि असुरों के पुत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं और हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रहलाद महाराज असुर बालकों को ये शिक्षा देकर उनके आसुरी भाव को समाप्त करना चाहते हैं। हम सबके हृदय में भी देवताओं वाले भाव भी हैं और आसुरी भाव भी हैं, तो इन संदेशों को ध्यानपूर्वक सुनकर इन पर मनन करके हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हैं और अपने हृदय के आसुरी भावों को समाप्त कर सकते हैं। आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कामान कामयते काम्यै। कामान यानी कि इंद्र तृप्ति की वस्तुओं को कामयते उसकी इच्छा करते हैं, इंद्रतृप्ति वस्तुओं को बटोरने की इच्छा करते हुए कामयी हम तरह तरह के कार्य करते हैं ताकि हम अपने शरीर को सुख दे सके। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा कि मेरा मन शांत ना रहे और शरीर सुखी ना रहे। पूरा जीवन हम यही प्रयास करते रहते हैं। हमें बड़े बूढ़ों से आशीर्वाद यही मिलता है कि सुखी रहो, और सुखी का मतलब है कि कुछ सुविधाएं हों, अच्छे खाने की सुविधा, सोने की सुविधा, मैथुन करने की सुविधा, बचाव करने की सुविधा, व्यक्ति सुखी है। बस यही हमारी इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है, शरीर सुखी रहे। तो बोले अगर शरीर सुख रखने की इच्छाएं हैं लेकिन वास्तविकता तो ये है, इसके लिए आप जो योजनाएं बना रहे हैं सावे देहस्तु पारख्यो, जिस शरीर को हम सुखी बनाने के लिए सारी योजनाएं बना रहे हैं वो शरीर हमारा ही नहीं है, जिसके लिए पूरा जीवन बिता दिया, जिसमें आपने हमने इतना इन्वेस्ट किया, अपनी पूरी शक्ति लगाई, समय लगाया इस शरीर को सुखी बनाने के लिए, वो बताया जा रहा है कि वो शरीर है ही नहीं हमारा, वो तो पराया है। पारख्यो किसका है? क्योंकि जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा इसको या तो जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगी, दफना दिया जाएगा तो कीड़े मकोड़े खा लेंगे, और ऐसे खुला छोड़ दिया तो गिद्ध और चील खा के मल बन जाएगा। ये हमारे शरीर का उज्जवल भविष्य है, या तो मल बनेगा या राख बनेगा या फिर कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, ये हमारे शरीर का उज्जवल भविष्य है। तो ऐसे उज्जवल भविष्य के लिए इतने प्रयास, पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। और भंगुरो याति उपेति च, ये शरीर तो भंगुर है, नाशवान है, ये तो कुछ समय के लिए आत्मा को गले लगाता है और छोड़ के चला जाता है, और हम उस शरीर से इतने आसक्त हो जाते हैं, उस शरीर को अपने आप से समझने लगते हैं और उसके लिए सारे प्रयास करते हैं। शरीर इतना निर्दयी है, आता है कुछ समय के लिए गले लगाता है और छोड़ के चला जाता है, सारे के प्रयास, सारे के सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती है। कितना महत्वपूर्ण संदेश है। हम सब के आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए हमें कम से कम अपने आप को शारीरिक चेतना से ऊपर उठाना पड़ेगा। जब तक हम इस शारीरिक चेतना में ही रहेंगे, अपने शरीर की सुख की ही वासना करेंगे, हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, आत्म साक्षात्कार का अर्थ है शरीर और मन की जरूरतों के प्रति उदासीन होना। शरीर की बहुत सी डिमांड होती हैं, मन की बहुत सी वेग होते हैं, इनके प्रति उदासीन होना और आत्मा की जरूरतों के प्रति बहुत गंभीर होना। लेकिन हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, शरीर और मन की आवश्यकता के प्रति बहुत गंभीर होते हैं। अपने आप को कितनी बारी हम दर्पण में देखते हैं और थोड़ा सा भी कहीं कुछ दाग नजर आ जाए तो हम चिंतित हो जाते हैं, थोड़ा सा कहीं कुछ दर्द हो जाए हम चिंतित हो जाते हैं। और आत्मा के लिए, आत्मा बिल्कुल जैसे कहते हैं संसार में बहुत ही अनकंफर्टेबल, बहुत जैसे कहते हैं उसके लिए ऑकवर्ड सिचुएशन है। प्रभुपाद कहते हैं, क्या बोलेंगे ऑकवर्ड को, अटपटी सिचुएशन में, स्थिति में है, बहुत ही अटपटी स्थिति में है। उसकी जरूरतों के प्रति हम ध्यान नहीं देते, उसके प्रति उदासीन रहते हैं, ये चलता रहेगा, ऐसे ही है, हम शरीर की सुविधाओं को जुटाने में लगे रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वास्तव में हम सबके अंदर जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो हिरण्यकश्यप को इंगित करती हैं। हिरण्यकश्यप का प्रभाव कहते हैं कि हिरण्य का अर्थ है सोना और कश्यप का अर्थ है मुलायम बिस्तर, यानी कि स्त्री और धन के साथ अपने शरीर को सुविधाजनक देना, सुख देना, यानी कि अपने शरीर को कंफर्ट देने के लिए, सुख देने के लिए हम धन बटोरते हैं। ये हिरण्यकश्यप है जो कि हम सबके हृदय में है। हम सबके यही अच्छा है कि हमारा शरीर सुखी रहे, और इसके लिए हम पूरा जीवन धन और सुविधाएं बटोरने में लगाते हैं। तो ये हिरण्यकश्यप हमारे हृदय में बैठा हुआ है और यही आसरी मानसिकता है, भौतिक धारणाओं के साथ जीना, यानी कि आसरी मानसिकता। और भौतिक धारणाओं की शुरुआत होती है सबसे पहले ये भ्रम रखना कि मैं ये शरीर हूं, और फिर ये शरीर से जुड़ी सारी वस्तुएं मेरी है। इस श्लोक में तो पहलाद महाराज एक कदम और आगे चले गए। अगर हम मान भी लें केवल सुनकर कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, चलो मैं आत्मा हूं, लेकिन हम ये मानते कि चलो मैं आत्मा हूं लेकिन ये शरीर मेरा है, ये भी बड़ा भ्रम है। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने ये मान लिया चलो मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा है, इसका मतलब इस शरीर का नियंता मैं हूं, इस शरीर का मालिक मैं हूं, स्वामी मैं हूं, इस शरीर का भोक्ता मैं हूं। हम देख सकते हैं हम इस शरीर के नियंता हैं क्या? क्या हमें से कोई अपने आप को बूढ़ा होने से रोक सकता है, बाल सफेद होने से रोक सकता है? जितना मर्जी प्लास्टिक सर्जरी हेयर डाई करा ले, है ना, लोगों के बाल सफेद होते हैं, ऊपर हेयर डाई लगाते हैं, ना वो काले रहते हैं ना सफेद रहते हैं, लाल हो जाते हैं एक अजीब सा ही, है ना, बेचारा प्रयास करता रहता है। उसको उनको बुरा मत माने, थोड़ा सा भी संकोच नहीं होता, बस सफेद नहीं दिखने चाहिए बाल, क्यों नहीं दिखेंगे, हम रोक ही नहीं सकते। जितना मर्जी हम जिम में चले जाएं, अपने आप को निहारें, जो मर्जी एक्सरसाइज कर लें, शरीर को ढलने से हम रोक नहीं सकते। कोई नियंता नहीं है, कोई भोगता क्या भोगता है, जो चीज हमें पसंद आती है उसको ज्यादा खाते हैं पेट खराब हो जाता है, लिमिट, हर चीज लिमिटेड है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं सबसे बड़ा दुख इस संसार का यह है कि जिस व्यक्ति से मैं मिलना नहीं चाहता उसके साथ मुझे मिला दिया जाता है, और जिसके साथ रहना चाहता हूं उससे मुझे दूर कर दिया जाता है। मन हमेशा दुखी, शरीर हमेशा पीड़ित, शुरू से लेकर अंत तक ये शरीर ने हमें दुख ही दिया है। जैसे ही ये शरीर आत्मा को आलिंगन करता है, दुखों की कड़ी शुरू हो जाती है। मां के घर में हम कितना कष्ट पाते हैं, और जब मां के गर्भ से हम बाहर निकलते हैं, हवा के प्रेशर से उसे कीड़े मकोड़े की तरह बाहर धकेल दिया जाता है, खून से लथपथ, तड़पता हुआ, रोता हुआ बाहर आता है ना। हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो हंसता हुआ मां के गर्भ से बाहर आया हो, है कोई? केवल जब भगवान प्रकट होते हैं या निमाई पंडित प्रकट होते हैं तब वो हंसते हुए प्रकट होते हैं। हमें से कोई लड़का हो या लड़की, बेबी गर्ल हो या बॉय, रोते हुए ही आएगा, हमेशा रोते हुए। और जाते भी कैसे हैं? रोते हुए, शुरुआत रोते हुए, अंत रोते हुए, बीच में कहां से आनंद आ जाएगा? शरीर अविद्या जाल, ये शरीर अविद्या का जाल है। ये शरीर किसी भी ढंग से हमें सुख नहीं दे सकता। और इतना बड़ा भ्रम है, जब हमारा शरीर हमको ही दुख दे रहा है, हम सोचते हैं कि दूसरे का शरीर मुझे सुख दे देगा। एक पुरुष जब स्त्री को देखता है बोलता है ये स्त्री मुझे सुख देगी, स्त्री पुरुष को देखती है स्त्री सोचिए पुरुष मुझे सुख देगा। अरे भाई, जिसका शरीर खुद को सुख नहीं दे रहा वो दूसरों को कैसे सुख दे सकता है? पहले ही एक शरीर और एक मन हमें दुखी कर रहा है, एक दूसरे शरीर और दूसरे मन का भोजा, फिर तीसरे शरीर और तीसरे मन का भोजा, कैसे हम सुखी रह सकते हैं? और जब व्यक्ति बच्चा मां के घर से रोता हुआ बाहर निकलता है, सारे बड़े खुश होते हैं। और जब धीरे धीरे वो बोलना शुरू करता है तो पहला शब्द यही बोलता है, मामा पापा, मामा पापा, मामा पापा। मामा पापा मीन्स मेरा पाप, मेरा पाप। ये जो शरीर है ये मेरा पाप है। वो खुशी मना रहे हमारे घर में बच्चा हुआ, अरे मेरा पाप है आपके घर में पैदा हो गया मैं। ये शरीर का मतलब पाप, प्रभुपाद में बॉडी मीन्स सिंफुल लाइफ। और जब हम किसी दूसरे के शरीर से आसक्त हो रहे हैं, मतलब कि दूसरे के पापों से आसक्त हो रहे हैं। किसी के पापों से आसक्त होकर हमें खुशी मिल सकती है? ये शरीर पूरा जो नेट प्रोडक्ट है, पूर्व जन्मों में जितने हमने पाप की है उसका ये नेट प्रोडक्ट है ये शरीर। और हम इसे कितने खुश होते हैं कि वाह कितना सुंदर है, कितनी सुंदर है ना, मिस वर्ल्ड, मिस्टर वर्ल्ड, कितना। देखिए ये पूरी की पूरी जो आधुनिक सभ्यता है ये पूरे शारीरिक चेतना को बढ़ा रही है। ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को कंफर्टेबल बनाओ, सारे सारे सुविधाएं बटोरो। ये एक पशु चेतना है। एक कुत्ता अपने आप को कुत्ता मान रहा है, कोई बुराई नहीं है। सुअर अपने को सुअर मान ले, कोई बुराई नहीं। लेकिन मनुष्य अपने आप को मनुष्य माने, ये बहुत बड़ा घाटा है। मनुष्य मनुष्य नहीं है। मनुष्य को जाना चाहिए कि मैं इस मनुष्य शरीर के रहने वाली आत्मा हूं। मनुष्य शरीर शुरुआत ही तबाह होता है, तभी होता है मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन तभी शुरू होता है जब वो जान जाए मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा के स्तर पे वो कार्य करे। तदपि अध्रुवम अर्थदम, बहुत जल्दी प्रतिक्षण ये शरीर क्षय हो रहा है, प्रतिक्षण हम मर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं प्रतिक्षण भौतिक प्रकृति हमें एक नया शरीर दे रही है, हम नहीं जानते। जैसे कैमरे से फोटोग्राफ खींचा जाए, एक दो तीन चार फोटो खींचकर उसको रील बना के चला जाए तो चलचित्र लगता है। चलचित्र का अर्थ है चित्र जो चल रहा है। यही हमारा जीवन है, चित्र चल रहे हैं। प्रतिक्षण नया शरीर, प्रतिक्षण नया शरीर, प्रतिक्षण नया शरीर। लेकिन उसको कंटिन्यूस ऐसे चलाया जाता है, लगता है पूरी पिक्चर चल रही है हमारे जीवन की। कितने दिनों के बाद जब किसी छोटे बच्चे को मिलते हैं, अरे तू बहुत बड़ा हो गया, हमें लगता है ना ऐसा, ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन जो उसको रोज प्रतिदिन देखते हैं उनको नहीं लगता बड़ा हो रहा है ना। तो प्रतिक्षण हमारा शरीर बदल रहा है, प्रतिक्षण हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, प्रतिक्षण। तो मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि कभी भी ये शरीर हमसे छूट जाएगा, और जब नए शरीर में जाने लगे हैं उससे पहले हमें साक्षात्कार हो जाए कि मैं कृष्ण का दास हूं। ये इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन हम लोग अपने ही नशे में हैं, बस शरीर के लिए सुख जुटाने में लगे हुए हैं, और समय इतनी तेजी से बीतता है मालूम ही नहीं चलता, और हमारे मन के अंदर अतृप्त इच्छाएं लग जाती हैं, और फिर से अगला शरीर। कोई कहे चलो ठीक है ये शरीर क्षणभंगुर है, लेकिन कुछ समय के लिए तो आत्मा को इसने आलिंगन किया, तो इसको सुख देने में बुराई क्या है? आप इतनी डरावनी बातें क्यों कर रहे हैं? इतनी घबराहट हो जाती है ये बातें सुनकर हमें। क्या क्या फर्क पड़ता है अगर शरीर को हम कुछ कंफर्टेबल बना दें, क्या दिक्कत क्या है? तो इसके पिछले ही श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया था, सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणा सदा आपनोति ही दुखम अनहिया सुख आवृता। पिछले ही श्लोक में प्रहलाद महाराज ने बताया कि प्रत्येक भौतिकवादी जो सुख का इच्छा रखता है, उसका यही हर कार्य के पीछे यही उद्देश्य होता है कि मेरे जीवन में सुख बढ़े और दुख कम हो जाए। बिल्कुल सही इच्छा है, लेकिन इसका परिणाम क्या मिलता है? सदा आपनोति ही दुखम, हर अवस्था में हमें दुख ही मिलता है। श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो हर अवस्था में हमारा प्रयास होता है सुख को बढ़ाने के लिए और दुख को कम करने के लिए, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा मिलता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है, हमारी योजना होती है कि हमारे जीवन में सुख बढ़े और दुख कम हो जाए। इसी के लिए पाठ पूजा करते हैं, इसी के लिए मंदिर आते हैं, इसी के लिए तरह तरह के यज्ञ करते हैं, ज्योतिषों के पास जाते हैं, हर कार्य के पीछे यही उद्देश्य है। लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं सदा आपनोति ही दुखम, जैसे ही हम अपने शरीर और मन को सुखी करने का प्रयास करना शुरू करते हैं दुख शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसा प्रयास करने का लाभ क्या, नंबर एक। नंबर दो, अगर प्रयास कर भी लिए, किसके लिए कर रहे हैं? क्षण भंगुर शरीर के लिए, जो कि हमें छोड़कर चला जाएगा। नंबर तीन, जितनी ज्यादा हम सुविधाएं बटोरेंगे उतना ज्यादा हमें प्रयास बटोरने के लिए करना पड़ेगा। और तीसरा, काल के प्रभाव से हर चीज का क्षय होता है, तो हमें हमेशा और ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे इसको संभाल के रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए। उदाहरण देख लीजिए, जितने बड़ी बड़ी हमारे पास गाड़ियां हैं और चिंता पड़ जाती है, उसकी इंश्योरेंस कराओ, चोरी ना हो जाए ये ब्लॉक लगाओ और उसकी मेंटेनेंस करो, नए नए इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं उसको हमें कितना मेंटेन करना पड़ता है, कितनी शक्ति लगती है, और हमें लगता है कि हम इसके पूर्ण रूप से निर्भर हो गए हैं, इसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता। तो इसलिए केवल शरीर को सुख देने के प्रयास से कोई भी लाभ नहीं है। आज के इस आधुनिक युग में इतना ज़्यादा तकनीकी एडवांसमेंट हो गया है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया है, हम सबके पास नए नए मशीन्स हैं, स्मार्टफोन्स है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, सब कुछ हमारे पास है और हम उंगलियों से कुछ बटन दबाने से कुछ भी कर सकते हैं। अब तो उंगलियों में बटन दबाने की भी जरूरत नहीं है, यूं करना है बस, है ना, टच स्क्रीन, इतनी कम मेहनत करनी है, इतना कम्फर्ट देना आपको, यूं करो बस यूं, और आगे ऐसे मशीन रहेगा, थोड़ा सा देखना होगा आगे स्क्रीन हो जाएगी, यूं इतना कम्फर्टेबल बनाया गया है। लेकिन क्या इतने कंफर्ट के साथ क्या हमारे जीवन में दुख कम हुए हैं? ऐसी मशीन्स, ऐसे गैजेट्स को यूज करने से क्या होता है, हमारी झूठी धारणा और पक्की हो जाती है कि हम नियंता हैं, हम कंट्रोलर हैं, किसी को भी चुप करा सकते हैं, शट अप, म्यूट, है ना, हमारे हाथ में, चलो बोलो शुरू करो, धीरे बोलो, ऊंचा बोलो, टेम्परेचर कम करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, आगे बढ़ो, पीछे आओ, फिर से आओ, सब हमारे नौकर हैं, सब हमारे नौकर हैं, सब हमारे ऐसे यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, सब। और हमें इतनी आदत पड़ जाती है मशीन को यूज करने के लिए, हम अपने आसपास के लोगों को भी मशीन की तरह यूज करते हैं, जो कमांड दे रहा हूं वो करो, नहीं करोगे यूज एंड थ्रो, नया बंदा लाओ, इस मशीन में यूं किया आगे नहीं बढ़ रही, फेंको, नया मशीन लाओ, ये व्यक्ति मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, दूर करोगे, नया व्यक्ति लाओ, हर वस्तु को यूज एंड थ्रो। यहां तक कि भगवान को भी केवल इसलिए मंदिर में आ रहे हैं कि मेरा जीवन सुखी रहे, ये भगवान जीवन सुखी नहीं करेगा, दूसरे भगवान के पास जाओ, नेक्स्ट, है ना, ये व्रत रखो, वो व्रत रखो, सब कुछ केवल अपने शरीर को सुखी बनाने के लिए। सुविधाओं से सुख प्राप्त नहीं होता, फैसिलिटीज इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस, सुविधाएं सुख नहीं देंगी। एक व्यक्ति बता रहे थे, एक सेठ जी हैं, उन्होंने अपने घर में 5 लाख का बिस्तर बेड खरीदा, 5 लाख का, और फिर भी रात को उनको नींद नहीं आती। सुख सुविधाओं से नहीं आता, सुख आता है संबंध से, और संबंध बनाने के लिए हमें त्याग देना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, सहनशील होना पड़ेगा, विनम्र होना पड़ेगा। और ये आत्मा के वास्तविक गुण हैं। आत्मा बिना संबंधों के खुशी पा ही नहीं सकती। आत्मा को कोई सुविधा नहीं चाहिए, आत्मा को केवल संबंध चाहिए, हृदय से हृदय का संबंध बस। ये सुविधाएं कुछ नहीं। जो 6 गोस्वामी हैं हमारे, रूप और सनातन गोस्वामी, नवाब हुसैन यहाँ के यहाँ प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अभी आप रामकेली में जाएंगे तो वहां पे अभी भी वो रूप सागर है जहां पे रूप गोस्वामी जी स्नान लिया करते थे, पूरा कुंड था उनके नाम का, और इतनी सुंदर उनको सुविधाएं। नवाब हुसैन से अपने उन्हें छोटा भाई मानता था, तो फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते थे कि हम बहुत नीच हैं, हम अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भगवान की सेवा में नहीं जुड़ पा रहे थे, उनको अपने जीवन में बहुत बड़ी कमी नजर आ रही थी। रघुनाथ दास गोस्वामी एक राजकुमार थे, उनके पिताजी की आय 500 साल पहले 12 लाख सोने की अशर्फिया, उनकी पत्नी अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर, लेकिन उनको सारी की सारी सुविधाएं कांटों की तरह चुभती थी, क्योंकि वो भगवान की सेवा में रत नहीं थे। और रूप सनातन गोस्वामी अपने पूरे महल के जीवन को त्याग कर आए वृंदावन में, और कहां रहने लगे, एक पेड़ के नीचे, क्या डालने लगे, खाली फटे हुए कपड़े जो कि सड़क पे लोग फेंक देते थे उसका कोपिन बना के, और मधुकरी करते थे, जो राजा के यहां थे अब वो भीख मांग रहे हैं, कच्ची रोटी मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ पके हुए चने मिल जाए उसको खा लेते थे, और फिर शास्त्र लिखते थे। उनके पास कोई लैपटॉप कंप्यूटर नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, ताल के वृक्ष पत्तों के ऊपर लिखते थे, इतना बड़े बड़े कार्य, लेकिन पूर्ण रूप से आनंद में थे। उनको रंच मात्र भी ये दुख नहीं हुआ, क्या कर लिया मैंने यार, फालतू में चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ले, कैरियर स्पॉइल हो गया मेरा, आज मैं होता तो और आगे बढ़ जाता, आसपास के लोगों ने भी नहीं बोला ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हालत बना रखी है, कहाँ तुम प्रधानमंत्री हो, यहाँ धक्के खा रहे हो, कोपिन में भीख मांग रहे हो, ओहो बहुत बुरी हालत हो गई आपके। नहीं, गोपी भाव रसा मृति दिलहरी तल्लोल मग्नो मोह, मग्न रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या पीते थे, 2-3 दिन में 90 मिलीलीटर छाछ, बस उसी में मग्न है राधा कुंड में। साफ दिखाई देता है कि आत्मा का आनंद इन बातों पर निर्भर नहीं करता, हमें केवल अपनी चेतना को उत्कृष्ट करना होगा, और यह सुविधा केवल मनुष्य जीवन में ही है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, शरीर को सुख बनाने के प्रयास में समय मत गवाओ, कोई फायदा नहीं है। जितना ज्यादा प्रयास करोगे उतनी ही मात्रा में दुख मिलेगा, और ये शरीर आपको छोड़ के चला जाएगा, पूरा जीवन चिंताओं में ही निकल जाएगा। इसके प्रति बिल्कुल उदासीन रहो और आत्मा की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करो। प्रभुपाद षट गोस्वामियों के इस उदाहरण को, एक कलकत्ता के एक वकील थे जो कि अंग्रेजी शासन में C.R. दास, उनसे कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। वो बैरिस्टर थे अंग्रेजी शासन में, गांधी जी ने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हर चीज अंग्रेजी त्याग दो, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। लेकिन उस व्यक्ति को सुविधाओं पर निर्भर रहने की इतनी आदत पड़ गई थी कि 1 साल के अंदर ही उसको डिप्रेशन हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। वो सहन नहीं कर पाया, सारी सुविधाएं को उसने खुद ही त्यागा और खुद ही सहन नहीं कर पाया और उसको मृत्यु हो गई इसकी। तो इसलिए हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, क्या मैं इन सुविधाओं पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहा हूं। जितना ज्यादा हम अपने जीवन को सादा रखेंगे उतनी हम शक्ति बचाएंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस में भक्ति के कार्यों को करने के लिए। ये देहात्म चेतना, शरीर को सुख देने की इच्छा हमारे भक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है। और ये नाम अपराध में 10वां नाम अपराध है। हरि नाम की अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, अगाध महिमा सुन ली हमने, फिर भी हमारी आसक्ति बनी हुई है। हैनाम अगात आसक्ति का अर्थ है कि हमारे भोगने की प्रवृत्ति बनी हुई है। हम भक्ति के प्रत्येक कार्य को, भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा मतलब निस्वार्थ होना ही है, अन्य अभिलाषिता शून्यम। सेवक की अपनी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि इस सेवा से मुझे ये प्राप्त हो जाए, फिर वो सेवा नहीं रही। लेकिन अगर हमें हर सेवा को हम इस दृष्टि से देखेंगे कि इससे मेरे शरीर को कितना सुख मिलेगा, खत्म, खीर में आपने रेत डाल दी। तो ये हमारे भक्ति में भगवान को प्रसन्न करने की में सबसे बड़ी बाधा है। हर सेवा का हर कार्य कितनी बड़ी विडंबना है कि सेवा भोगने की प्रवृत्ति से कैसे होगा। 20-25 साल निकल जाते हैं भक्तों को, वो कहते हैं हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, कैसे होगा। भौतिक आसक्ति बनाए रखी, भोगने की प्रवृत्ति बनाए रखी। बहुजन ने कभी श्रवण कीर्तन तदो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। भक्ति केवल बाहरी क्रियाएं नहीं है, भक्ति हृदय का मामला है। हृदय में भोगने की प्रवृत्ति, बाहर से दिखने में सेवा, कोई परिवर्तन नहीं। प्रभुपाद कहते हैं हमें ऐसा जप करना चाहिए कि जैसे बच्चा मां के लिए रो रहा हो। बच्चा मां के लिए क्यों रोता है, क्योंकि बच्चा अपने आप को मुसीबत में पाता है। कोई चींटी उसको काट रही है, कोई चीज उसको चुभ रही है, उसने मल त्याग दिया, उसको उसको बहुत ही खराब लग रहा है, वो बड़ी अपने आप को समस्या में पाता है, और इस समस्या को दूर करने के लिए बिल्कुल असहाय है। जब वो अपने आप को समस्या में पाता है और असहाय पाता है, तब वो जोर जोर से रोकर मां को पुकारता है। इसी ढंग से जब हम जप कर रहे हो, हमें क्या लगता है कि हम मुसीबत में हैं? नहीं, क्यों मुसीबत में हूं। देह आप्त कलादेशु आत्म सैन्यशु असतपि, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, इतने बड़ी फैक्ट्रियों का मैं मालिक हूं, मेरी सुंदर पत्नी है, बहुत ही मेरा ध्यान रखती है, इतने मेरे बच्चे हैं, पड़ोसी रिश्तेदार, मैं बहुत सिक्योर्ड हूं, बहुत सिक्योर्ड हूं, है ना। कोई स्टूडेंट सोचेगा मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, आगे अच्छी नौकरी मिल गई है मुझे, बहुत सिक्योर्ड हूं, है ना। एक युवती सोचेगी बहुत अच्छे हस्बैंड मिलने वाले हैं मुझे, अच्छी जगह शादी हो रही, बहुत सिक्योर्ड हूं, बहुत सुरक्षित हूं, है ना। ब्रह्मचारी सोच रहा है सब कुछ बढ़िया चल रहा है मेरा, मैं बहुत सुरक्षित हूं, सब क्लास फर्स्ट क्लास। अपने आप को हम मुसीबत में पाते ही नहीं, जबकि प्रकृति के तीन गुण रोज हमें चपेटे मार रहे हैं इधर उधर। जैसा रजोगुण तमोगुण नचा रहे हम नाच रहे हैं, लेकिन हम लगता नहीं हम मुसीबत में हैं, और असहाय तो है ही नहीं। क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो है, ये तो माला कर रहा हूं ऐसे, है ना, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, 16 माला कर रही है, बस निपटा दिया, कैसे रोएंगे हम। अपने आप को मुसीबत में पाना है, असहाय अवस्था में, तब हम रो पाएंगे। लेकिन अगर हम इन सुविधाओं पर निर्भर करेंगे कैसे रोएंगे। तो चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का जब सेवा की भावना से, भोगने की भाव से नहीं। श्रवण करते हैं भोगने के भाव से। भक्ति सिद्धांत सेवक ठाकुर महाराज कहते हैं जब हम भागवत कथा श्रवण करें तो ये भाव होना चाहिए ये हरि कथा ही मेरे जीवन को बचा सकती है। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूं, इससे इसी से मेरे जीवन के सभी समस्याओं का समाधान है। लेकिन नहीं, हम तो भोगने की प्रवृत्ति से, कोई नई चीज सुनाओ, अच्छे ढंग से सुनाओ तब हम सुनेंगे। प्रसाद, प्रसाद हमारे लिए भोग बन जाता है, जो हमारे पसंद का है हम खुश हैं, पसंद का नहीं है छोड़ देते हैं, बेकार है। ये प्रसाद है, भगवान की कृपा है, इसको भी सेवा की भावना से। तभी तो महाप्रसादे गोविंदे ये मंत्र बोलते हैं, नहीं कौन ध्यान देता है इस मंत्र को बोलने में। और कई बार तो इतनी इच्छा होती है खाने की, शॉर्टकट मार देते हरी 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 जल्दी जल्दी हरी 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 हरी। भक्तों का संग, भोगने की प्रवृत्ति होगी तो कैसे हम भक्तों का संग कर सकते हैं, कैसे हम उनकी सेवा कर सकते हैं। सारा का सारा ये कुप्रभाव है शारीरिक चेतना का, भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भोगने की प्रवृत्ति बनाए रखना। तो इसलिए ये हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा है। तो हमें प्रयास करना है, जब हम जप करने बैठे तो भूत शुद्धि मंत्र का उच्चारण करें, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना ब्रह्मचारी हूं, ना ग्रस्त हूं, ना वानप्रस्थ हूं, ना मैं सन्यासी हूं। गोपी भरते पद कमलो दास दासानु दास। कम से कम जप करते समय हम इस चेतना में आने का प्रयास करें, क्योंकि हम जप कर रहे हैं तो हमारी योजनाएं चल रही हैं। क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूं, आगे जाके मुझे क्या करना है, कौन कौन सी मीटिंग करनी है, क्या करना है। क्योंकि मैं स्त्री हूं, गृहिणी हूं, घर का काम कैसे निपटाना है। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी हूं, अपने परीक्षा के लिए कैसे तैयारी करनी है। सब कुछ जप के समय चल रहा होता है। लेकिन ना मैं विद्यार्थी हूं, ना मैं गृहिणी हूं, ना मैं बिजनेसमैन हूं, मैं केवल भगवान के दासों का दास हूं। और एक केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप का समय केवल भगवान को पुकारने के लिए है कि कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाइए। मैं हूं कृष्ण दास, मेरा है मतलब कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है, कृष्ण की सेवा का अवसर, ये है मैं और मेरा। मेरी पहचान क्या है, मैं कौन हूं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। आपकी संपत्ति क्या है, कृष्ण की सेवा करने की का अवसर, बस ये मेरा है और इसके अलावा मेरा और कुछ भी नहीं है। एक बार एक प्रभुपाद जी के शिष्य बहुत उत्साहित होकर प्रभुपाद के पास गए और उन्होंने प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग। प्रभुपाद ने बोला, व्हाट डू यू हैव टू रिनाउंस, आपका है क्या जो रिनाउंस करोगे। आई वॉन्ट टू रिनाउंस एवरीथिंग, आपका है क्या, आप क्या त्यागोगे, आपका कुछ है तभी तो त्यागोगे, एक भिखारी क्या त्यागेगा, कुछ है ही नहीं आपका। तो हमें क्या त्यागना है कि हम इस भ्रम को त्याग दें कि मैं किसी चीज को त्याग सकता हूं, समझे। ये भ्रम हमें त्यागना है कि मैं किसी चीज को त्यागने के लायक हूं, जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं त्यागूंगा क्या। तो ये हमें जानना है कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये सब शरीर भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भूमि आपो अनल वायु खम्मना होती है बच्चा। जब हम ये बातें सुनते हैं कि ठीक है ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को जितना हम सुख देने का प्रयास करेंगे उतना ये दुख देगा, और फिर इसका हम तो आत्मा है, तो कई बार क्या होता है, नौ सिक्ख्या भक्त होते हैं वो शरीर की अवहेलना करनी शुरू कर देते हैं, शरीर को नकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन नहीं, भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि ये शरीर साधन है। ये मनुष्य जीवन एक को तुलना एक पुल से की गई है, ब्रिज से, जो कि हमें इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाए। ये शरीर मनुष्य शरीर वो है, इसलिए इस साधन को बहुत ही स्वस्थ अवस्था में रखना चाहिए। जब तक ये शरीर स्वस्थ नहीं होगा हम इसे साधन कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद जी हम देखते हैं प्रतिदिन वो मॉर्निंग वॉक में जाते थे और प्रतिदिन अपने शरीर की मालिश करवाते थे और इससे वो पूरा स्वस्थ रहते थे और इतनी सुंदर सेवाएं करते थे वृद्ध अवस्था में भी। प्रभुपाद हर कार्य ऐसे करते थे जैसे उनके पास बहुत समय है, बहुत समय है। तो प्रभुपाद जैसे अगर वो पहले तो सब चिट्ठियां भी लिखते थे खुद, फिर डिक्टेट करते थे, फिर इतनी लंबी साइन करते थे एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और पेन को रखते थे एक केस में, वुडन केस में, उस वुडन केस को रखते थे अलमीरा के अंदर और अलमीरा को लॉक करते थे। तो अगर साइन करने पहले अलमीरा खोलेंगे उसमें से वो लकड़ी का वो डब्बा निकालेंगे, फिर उसको निकाल के फिर पेन निकालेंगे, फिर उसको बड़े आराम से साइन करेंगे। तो हम गए कितना समय इनके पास है, लेकिन प्रभुपाद क्या क्या नहीं करते थे, पूरी ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था को खड़ा किया है ना, मैनेजमेंट किया, शास्त्रों लिखा, लोगों से बातचीत की, प्रेरित किया, पूरे विश्व का भ्रमण किया, इतना समय कहाँ से आ गया। रोज मॉर्निंग वॉक, रोज मसाज, हमारे पर थोड़ा सा प्रेशर पड़ जाए हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, ये करना छोड़ देते हैं, फटाफट काम करेंगे, शॉर्ट में साइन करेंगे, भागते रहेंगे, लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं, ये कैसे प्रभुपाद इतना कर लेते थे। क्योंकि प्रभुपाद बहुत ही नियमित जीवन जीते थे, नियमित जीवन। अगर हम नियमित जीवन जिएंगे, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, समय से प्रसाद लेंगे, सही मात्रा में प्रसाद लेंगे, हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा और फिर हम अपनी पूरी शक्ति भगवान की सेवा में लगा पाएंगे। कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये शरीर मेरा है। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे तो झारखंड के जंगल से गुजरे और रास्ते में उनको रोग हो गया, एक्जिमा जैसे उनके शरीर पर सारे फोड़े फुंसी इत्यादि हो गए और शरीर से पस निकलनी शुरू हो गई। तो जब ही वो वहां जाते थे जगन्नाथपुरी में गए तो उन्होंने रास्ते में सोच लिया, जब इस शरीर से मैं महाप्रभु की सेवा ही नहीं कर पाऊंगा तो इस शरीर किस लायक। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए उनके पहिए के नीचे अपने शरीर को त्याग दूंगा, उन्होंने आत्महत्या की योजना बना ली। तो बाद में जब वो आए तो हरिदास ठाकुर के यहाँ वो रहने लगे। हरिदास ठाकुर भी क्योंकि यामन जन्म कुल में उनका जन्म हुआ था तो उनको भी आज्ञा नहीं थी कि वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सके। हरिदास ठाकुर जी का कोई दुख नहीं था, वो आराम से बाहर ही बैठते थे और सिंह द्वार में जाके पतित पावन जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। तो सनातन गोस्वामी से मिलने जब चैतन्य महाप्रभु आते थे तो प्रतिदिन जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर आते थे और जब भी वो सनातन को देखते थे उनका आलिंगन कर लेते थे। सनातन गोस्वामी को बहुत दुख होता था, पूरे शरीर से पस निकल रही है और चैतन्य महाप्रभु भगवान उनका आलिंगन कर लेते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। तो एक बार सनातन गोस्वामी को खुद बोला चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, उन्होंने कहा कि सनातन अगर कोई जाने कि आत्महत्या करके ही वो भगवान को प्राप्त कर सकता है तो मैं तो लाखों बारी आत्महत्या कर लूं। भगवान कृष्ण को हम केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, आत्महत्या करके नहीं। फिर उन्होंने बोला आपने सोच कैसे लिया कि तुम आप आत्महत्या कर लोगे, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा नहीं मेरा है। एक बार जब हम दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं तो शरीर हमारा नहीं है, शरीर गुरु का है। और बोले कि तुम्हारे शरीर मोर प्रधान साधन, तुम्हारा जो शरीर है मेरा प्रधान साधन है, क्योंकि मैं आपसे वो कार्य कराना चाहता हूं जो मैं नहीं कर सका। मुझे अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जगन्नाथपुरी में रहना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हारे शरीर से वृंदावन में भगवान की लीला स्थलियों को स्थापित कराऊंगा। तो शरीर आपका नहीं मेरा है। फिर उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला कि देखो ये कैसे सज्जन पुरुष हैं, दूसरे की संपत्ति के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि इस शरीर को हमने बहुत स्वस्थ अवस्था में रखना है ताकि हम इसको गुरु की सेवा में लगा सके। हमें इस शरीर से आसक्त नहीं होना, लेकिन इस शरीर को गुरु और भगवान की सेवा में लगाना है, इससे हमें आसक्त होना है। इसलिए इस शरीर को हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना चाहिए। और जैसे कि ये शरीर निरंतर ढलता जा रहा है, मृत्यु की तरफ अग्रसर है, उसी ही गति से हमारी चेतना भी उत्कृष्ट होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे शरीर वृद्ध होता जाएगा, मृत्यु की तरफ बढ़ेगा, अगर हमारी चेतना उत्कृष्ट नहीं है तो ये शरीर हमें बहुत दुख देगा। हम सब जानते हैं वृद्धावस्था में कितने कष्ट होते हैं। तो हम इस शरीर से कोई भी सहयोग की आशा ना रखें, ये नहीं सोचें कि ठीक है ये शरीर मुझे सहयोग देगा, नहीं। हम देखते हैं बड़े बड़े आचार्यों के जीवन में भी बहुत शारीरिक कष्ट आए। प्रभुपाद लीलामृत में हिज होलीनेस सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि प्रभुपाद ने अपने अंत्य लीला में इतने शारीरिक कष्ट पाए, इसके पीछे तीन उद्देश्य थे। पहला, प्रभुपाद एक आचार्य हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि भौतिक जगत में कष्ट ही कष्ट हैं, ये शरीर हमेशा हमें कष्ट देगा। दूसरा, एक आचार्य के रूप में वो दिखाना चाहते थे कि उनके जो अयोग्य शिष्य हैं, जो सही ढंग से नियमों का पालन नहीं करते, तो गुरु को उसका भार उठाना पड़ता है। तीसरा, वो अपने शिष्यों को सेवा का मौका देना चाहते हैं। तो हम प्रभुपाद जी ने दिखाया कि कैसे हमें शरीर त्यागना है, इसके लिए पूरा जीवन तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के समय हमें अचानक भगवान का स्मरण हो जाएगा। प्रतिक्षण हमें देखना चाहिए कि हम अपने आप को देहात्म चेतना से ऊपर उठा पा रहे हैं कि नहीं। मैं कितना देह के सुख के लिए हमेशा आतुर हूं, कितना मैं अगर देह के सुख की कुछ सुविधाएं मुझसे छीन ली जाए, कितना मैं जल्दी उद्विग्न हो जाता हूं। ये सब हम अपने आप को झांक, अपने आप को नाप सकते हैं कि हम किस स्तर पे हैं। पर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा शारीरिक सुविधाओं पर निर्भर हैं तो ये खतरे की घंटी है। हमें इससे ऊपर उठने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा संकीर्तन में भाग लेना चाहिए। श्री प्रभुपाद कहते हैं गौर निताई के आगे जोर जोर से नाचने से और जोर जोर से कीर्तन करने से हमें यह साक्षात्कार हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। कितनी सरल विधि है। नहीं तो मायावादी लोग नेति 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 करके इस निर्णय में पहुंचते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और यहां भक्ति में केवल नाचने से ही हमें यह साक्षात्कार हो जाएगा कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और दूसरा, जो षट गोस्वामियों ने अपने जीवन चरित्र से दिखाया, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। वैराग्य का हम अनुशीलन करें। वैराग्य का अर्थ क्या है कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में, और जो वस्तुएं भक्ति के प्रतिकूल हैं उसको हम त्याग दें। ये वैराग्य। विद्या संबंध ज्ञान का अनुशीलन करें कि मैं कौन हूं, ये भौतिक जगत क्या है, मेरा भौतिक से क्या संबंध है। और भक्ति, भक्ति के नियमों का सख्ती से पालन करें। इस ढंग से हम धीरे धीरे क्रमशः अपने आप को शारीरिक चेतना से ऊपर उठा सकते हैं। और जीवन के अंत में इस शरीर को छोड़ने से पहले हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, वो हमारा असली आध्यात्मिक शरीर है। भगवान के धाम में आत्मा तो इस भौतिक जगत में एक बीज के समान है, एक बाल का 10,000वां हिस्सा कंप्रेस्ड किया गया, तभी तो हम इतने यहां पे अनकंफर्टेबल हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जाकर आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त करता है। और उस स्वरूप के क्या लक्षण है कि हमें कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बुढ़ापा नहीं होगा, आत्मा स्वतः ही बहुत सुंदर है, उसको किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। मेकअप का अर्थ क्या है, डाउन जा रहा है, मेकअप उसको ऊपर करो, शरीर बूढ़ा हो रहा है, मेकअप दिखावटी सब कुछ, वहां किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं है। आत्मा अपने आप में बहुत सुंदर है और बहुत हमेशा सच्चित आनंद में रहेगी। और जो भगवान के गुण हैं वही आत्मा में गुण आते हैं। अंगानि यस्य सकलं निर्वत्ति मन्ति, हम किसी भी अंग से किसी दूसरे अंग का कार्य कर सकते हैं। जो भगवान के अंदर गुण है वो वहां पे नित्य सिद्ध जीवों में भी यही गुण है। आप कोशिश कल्पना कीजिए, आंखों से कान का काम कर सकते हैं, कान से आंखों का काम कर सकते हैं, यहां तो आंखें और कान अपना काम सही ढंग से नहीं कर सकते हैं, है ना। हियरिंग एड, चश्मा, पेट खराब है, वहां कोई समस्या ही नहीं है। वहां तो छोड़कर स्वर्गलोक में भी चले जाते हैं, वहां भी टॉयलेट नहीं है, जो खाएंगे खून बन जाएगा, कितना सुख है देखिए, है ना। तो इसलिए हम लोग अपने आप को इस मनुष्य जीवन केवल इसीलिए मिला है कि हम इसको स्वस्थ रखते हुए अच्छे ढंग से साधना करें, अपनी चेतना को हमेशा उत्कृष्ट रखें, सादा जीवन बताएं, कम से कम सुविधाओं पर निर्भर करें, जितनी भी हमारी शक्ति है, एनर्जी है, उसको आत्म साक्षात्कार में लगाएं, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा। अन्यथा शरीर का भविष्य बहुत ही दुखद है और उज्ज्वल नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु शास्त्र आदेशों के अनुसार इसको जीकर हम अपने शरीर का भविष्य उज्ज्वल बना सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हाँ जी माता जी, माइक। हाँ, अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम ये समझ रहे हैं कि आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और यहां बताया जा रहा है कि शरीर आत्मा का आलिंगन करता है और छोड़कर चला जाता है, है ना। हाँ, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि शरीर कितना, भगवान की भौतिक प्रकृति कितनी निर्दयी है, कैलस जिसे बोलते हैं, जस्ट आपको एम्ब्रेस करेगी, थोड़ी देर के लिए आलिंगन करेगी, भी छोड़ के चली जाएगी। इससे इस दृष्टिकोण से, इस ढंग से प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि जिस शरीर को आप सुविधाएं देने के लिए इतना प्रयास कर रहे हो, ये थोड़ी देर में आपको छोड़ के चला जाएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप इतने प्रयास कर रहे हो। एक ही बात है, आत्मा शरीर से निकल जाएगा, शरीर क्षण भंगुर है, समाप्त हो जाएगा, छोड़ देगा आपको, इस दृष्टिकोण से बताया जा रहा है। हाँ जी, मम पापा, हाँ हाँ, ईश्वर, हाँ जी, आपका प्रश्न मैं समझा नहीं। ओ, यानी कि भगवान ने हमें खुला छोड़ देना चाहिए, हमें यहाँ भेजने की आवश्यकता क्यों थी? हाँ, हमें इसलिए आए क्योंकि हम भगवान से स्पर्धा कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे, हम स्वयं भगवान बनना चाहते थे। जैसे एक छोटी बच्ची माँ को देखती है किचन में काम कर रही है तो वो भी बोलती है मैं अभी खाना बनाऊंगी, तो माँ उसको प्लास्टिक के बर्तन ला देती है और प्लास्टिक की वो बेलन करती है, प्लास्टिक की गैस है, वो खेलती है, घर घर खेलती है, प्लास्टिक की रोटी है, तो उसी में वो खुश है। तो हमारे भी यही हालत है, हम भगवान बनना चाहते हैं, कुछ नहीं है तो प्लास्टिक का जगत बना दिया, चलो यहाँ भगवान बनो, तो ये नकल मारते हैं।
शक्ति बचती है जिसको हम आत्म साक्षात्कार में लगा सकते हैं, परंतु एक्सटर्नली ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से, फैसिलिटी के आने से समय बचता है। जैसे पहले टेलीफोन्स होते थे तो मोबाइल फ़ोन आने से तुरंत कनेक्शन मिल जाता है, बहुत समय बचता है बातचीत करने का। तो फैसिलिटीज़ के आने से ऐसा लग रहा है कि समय की बचत हो रही है, बट एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि सरल जीवन जीने से वास्तव में हमारी समय और शक्ति बचती है।
बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है, अपने आप एक्सपोज हो रही है। पहले कम्युनिकेशन होता नहीं था, पहले आप सबको याद होगा ट्रंक कॉल मिलानी होती थी, पोस्ट ऑफिस में जाके दो दो तीन तीन घंटे वेट करना पड़ता था कि किसी से कॉल हो जाए, और जोर जोर से चिल्लाना पड़ता हेलो हेलो, समझ में नहीं आता था वो क्या बोल गया, अचानक कट गया, कितने दुखी होते थे। तार आती थी टेलीग्राम, तार की कोई डाकी आ गया ताल के पहले लोग रोना शुरू कर देते थे, कोई मरने की खबर आ गई है ना, कितना होता था कि कोई कम्युनिकेशन कितना मुश्किल होता था। और आजकल तो तुरंत व्हाट्सअप खट 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 हो रहा है सब कुछ, तो समय बचना चाहिए। लेकिन देखते हैं अभी भी लोग कह रहे हैं समय नहीं है, पहले कितना समय होता था, किसी का विवाह हुआ महीना छुट्टी आराम से, कितने अच्छे संबंध थे, कितना सब कुछ था। यही विडम्बना है, टेक्नोलॉजी सुख नहीं दे सकती, संबंध सुख देते हैं। प्रभुपाद का एग्जाम्पल दिया, प्रभुपाद के समय टेक्नोलॉजी क्या थी, कुछ भी नहीं थी, एक चिट्ठी लिखते थे, दूसरे देश में चिट्ठी जाती थी, फिर वापस आती थी, दो महीने में पूरा सर्कल पूरा होता था, दो महीने लग जाते थे कम से कम जाने में आने में, फिर भी सभी शिष्यों के साथ कितने अच्छे संबंध थे। आप देखो हमारे पास क्या संबंध है, एक ही घर में चार लोग रहते हैं, हर कोई अपने लैपटॉप में लगा हुआ है, अलग अलग हुआ, बातचीत करता ही नहीं, लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। टेक्नोलॉजी से कोई सुख नहीं मिल सकता,
सुख तो नहीं मिल सकता, बट समय नहीं बचता क्या?
समय कहाँ बच रहा है, किसके पास समय है? पहले गाड़ी आती थी एम्बेसडर 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर स्पीड, बड़ी मुश्किल से पूरा एक्सलेटर दबाने में, अब आ रही है मर्सिडीज, फिर भी समय नहीं है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, इसमें कोई थ्योरी की आवश्यकता ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। यही तो विडम्बना है, यही हमें सीखना है, समझना है कि सादे जीवन से कितना समय बचेगा, कितनी शक्ति बचेगी। ठीक है, हाँ
हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास के लिए। जैसा आपने आज का पूरा एक क्लास जो है कैसे हम अपने भौतिक सुख को या शरीर को जो सुख देने की जो लालसा है उसको कम से कम किया जाए वाली इस मुख्य प्रश्न था। तो जैसे आप लोग तो ब्रह्मचारी हैं, आश्रम में रहते हैं और यहाँ पर प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन में तपस्या करते हुए आप लोगों को यहाँ पर साधना करने का अवसर है, लेकिन मुझ जैसा व्यक्ति जो घर में परिवार के बीच बीवी बच्चों के बीच में रहते हैं जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं होती हैं, तो हमारे लिए मेरे लिए क्या इसके लिए
आपको कोई उत्तर देंगे? अच्छा है कि आत्म साक्षात्कार हो, आपको हम ऑफर देते हैं, एक हफ्ता हमारे साथ रहिए। तो आपको पता चल जाएगा किसका जीवन ज़्यादा सादा है और किसका जीवन इस्कॉन में ब्रह्मचारी RBI है, रिच ब्रह्मचारी ऑफ इस्कॉन। बहुत सुविधाएं हमारे पास और बहुत ही कष्टदायक है, तभी तो प्रगति रुक रही है हम सबके। हाँ, दूसरी सभा घास हमेशा हरी लगती है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम देखते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं वो लोग बहुत तपस्या करते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, अर्च विग्रह की भी सेवा करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, उसके बाद मंदिर में सेवा भी करते हैं, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ के आते हैं, ब्रह्मचारी को क्या है, कोई जिम्मेवारी नहीं, कुछ नहीं। कई बार ब्रह्मचारी और गैर जिम्मेवार हो जाता है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है, आराम से हो गया, नुकसान हो गया नहीं हुआ, नहीं हुआ कर लिया, कर लिया, है ना। तो ये दोनों ही आश्रम के लिए खतरनाक है, शारीरिक सुख। और ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा वो है, कोई डंडा नहीं है ऊपर इतना ज्यादा, है ना। दोनों ही आश्रम के लिए, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी आश्रम में हम इस चीज से बचे हुए हैं, बहुत बड़ा संकट है। और गृहस्थ आश्रम में भी बहुत बड़ा संकट है। ये भौतिक जगत बद जीव का ये नेचर है, अपने आप को कंफर्टेबल होना, तो इससे में बचना पड़ेगा। जैसे कि हम छू नहीं पाए इस बात को, जैसे कि भगवत गीता के 17वें अध्याय में शरीर की तपस्याएं बताई गई हैं, है ना। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। शरीर की तपस्या करें तो शरीर को सुविधाएं देने की हमारी इच्छाएं कम होती जाएंगी। शरीर को तपाएं, है ना, गुरुजनों की, ब्राह्मणों की, माता पिता की सेवा करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, ये तपस्या है। हम ये मां समझें कि शरीर की केयर करना माया है। दूसरे भक्तों का शरीर हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा है सेवा करने के लिए। किसी भी भक्त का शरीर अस्वस्थ है तो उसको ना बोले माया है, माया है, शरीर का ध्यान मत रखो, आगे बढ़ो। ये बहुत अच्छी सुविधा है, हमें सेवा करने का मौका मिला है। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम माला करते हुए प्रार्थना करें भक्त बीमार पड़े हम सेवा कर सके तो भी नहीं है। लेकिन दूसरों भक्तों की सेवा करना और उनके मन के कष्ट को दूर करना, शारीरिक कष्ट को दूर करना, ये सेवा है। तो इस ढंग से अपने शरीर को गुरुजनों की, माता पिता की, ब्राह्मणों की, वैष्णवों की सेवा में लगाना, इससे हम शरीर को भोगने की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकते हैं। और जो कुछ भी शरीर से जुड़ी हुई संपत्ति है, पत्नी, घर, बच्चे, गाड़ियां, बैंक बैलेंस, सब कुछ गुरु के लिए है। सर्वस्व गुरुवे ददायत। अपने घर में ऐसे वातावरण लाएं कि बहुत अच्छा आध्यात्मिक वातावरण हो और बाकी धन सब गुरु की सेवा में। अगर हम जैसे प्रभुपाद कल के लेक्चर में उदाहरण थे, लोग वृंदावन चले जाते हैं, वहां से अपने बेटे को फोन करते हैं, बेटा 200 रुपए भिजवा दो, असली संपत्ति है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ तुम भोगो, मुझे खाली 200 रुपए दे दो। अपने बच्चों को 2 करोड़ देके चले जाएंगे लेकिन भगवान के लिए केवल 200 रुपए, तो ऐसी प्रवृत्ति नहीं। भक्ति सरस्वती ठाकुर इसको बोलते थे अर्थ शाठ्य, यानी कि अर्थ के ऊपर वो शाठ्य क्या बोलेंगे, धोखाबाजी, ऐसा नहीं करना। जबरदस्ती वैराग्य का जीवन, इतना धन है, बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और फटी हुई धोती डाल के घूम रहा है, ऐसा नहीं। जो कुछ है भगवान के लिए, तब जाके हम इसको भोगने की प्रवृत्ति से बचेंगे। सारी सुविधाएं भक्तों के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। और जो ब्रह्मचारी है उसके के लिए एक ही संपत्ति है, गुरु की सेवा। कोई सुविधाएं नहीं, सुविधाएं दो ना दो, जहां भेजो कहीं भी भेजो, बस गुरु की सेवा। आत्मा को क्या चाहिए, केवल हरिना, भक्तों का संग, सोने की थोड़ी सी जगह और कुछ प्रसाद, बस यही तो जरूरत है हमारी, और क्या जरूरत है। इतना हमें समझ में आ जाए हर परिस्थिति में खुश, क्योंकि हम भौतिक सुविधाओं से अटैच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो ये परिस्थिति हमें लाभदायक लगती है, ये परिस्थिति हमें हानिकारक लगती है, ये हमें मित्र लगता है, ये हमें शत्रु लगता है, उससे हमें द्वेष होता है, उससे हमें कॉम्पिटिशन होता है, सारा का सारा ये देहात्म चेतना के कारण। चाहिए क्या आत्मा को सुख, हरिनाम सुविधा हो, भक्तों का संग हो, थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए, थोड़ी सी सोने की जगह मिल जाए, खुश। टाइम हो गया, बाद में प्रश्न ले सकते। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हिताई गौर प्रेमानंदे।